प्रभुपाद ने भी उसी भावना से जिस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की, उसी भावना के साथ अपने आप को एक निमित्त मानकर गुरु और श्री महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए उनके आदेशानुसार इस ग्रंथ की रचना की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जैसे कल हमने बताया, सबसे पहले 14 श्लोकों में मंगलाचरण लिखते हैं चैतन्य चरितामृत का, और बाद में 3 प्रमुख विग्रह संबंध, विधेय और प्रयोजन, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ या गोपीजन वल्लभ, इनकी वो गुणगान करते हैं और फिर ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण का 3 उद्देश्य बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। एक है वंदना, प्रणाम करना, शुरू करने से पहले। उसके बाद वस्तु निर्देश के कौन सा विषय के ऊपर ये पुस्तक मैं लिखने वाला हूं, और तीसरा आशीर्वाद, आशीर्वचन के जो भी पढ़ेगा क्या उसको फायदा हो। तो ये 2-3 चीज मंगलाचरण में स्वाभाविक साधारण रूप से होते हैं। तो पहला 2 श्लोक कल का हमने चर्चा किया, अरे वंदे गुरु ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम चतुक्षिप्ति ही कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। ये साधारण सामान्य प्रणाम मतलब, और बाद में स्पेसिफिक खास अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहे हो। तो कल का जो श्लोक था वो भगवान के 6 अलग अलग स्वरूप में कैसे वो प्रकट होते हैं और अपनी लीला करते हैं। वंदे गुरुन, गुरुवर्ग, गुरुगण, अंततः जैसे हमने कहा गुरु जो है वो भगवान की ही प्रतिनिधि है, अचिंत्य भेदा भेद साक्षात हृत्व समस्त शास्त्र। और वंदे गुरु ईश भक्तान, और गुरु का कार्य है भक्त बनाना, लोगों को भगवान की सेवा में लगाना। तो वंदे गुरु ईश भक्तान, भक्त लोग हैं। ईशम साक्षात भगवान, ईशावतारकान भगवान के सारे अवतार, उनका भी उद्देश्य वही है। तत्प्रकाशंश उनके विस्तृत रूप आध्यात्मिक संसार में, तत्प्रकाशंश तत्शक्ति। तो ये 6 तत्व कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जब आए इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने अनुयायी अपने स अंग उप अंग अस्त्र पार्षदम, सारे पार्षदों को लेके आए। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व भी हैं और प्रकाश, प्रकाश तत्व, तत्प्रकाशमश्च। प्रकाश मतलब नित्यानंद प्रभु जो हैं, प्रकाश का दूसरा अर्थ प्रभुपाद समझाते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की गुणगान का प्रकाशित करे, वो भी तत्प्रकाशमश्च। हम देखेंगे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की, कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की, जो प्रमुख माना जाता है चैतन्य लीला को जानने के लिए। और दोनों को स्फूर्ति मिला नित्यानंद प्रभु के द्वारा, दोनों की शक्ति मिली ये सब करने की नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो आज अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम जानते हैं वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तत्प्रकाशमश्च, उन्होंने प्रकाश डाला। महाप्रभु है कौन? इसीलिए नित्यानंद प्रभु कहते थे भज गौरांग कहो गौरांग लह गौरांग नाम रे, ये जन गौरंग भाजे भजे शेहा मोरा प्राण, वो मेरे प्राण हो जाएंगे गौरंग महाप्रभु की जो भजना। तो ये पार्षद ने सारे पार्षद वंदे गुरु, गुरु तत्व और प्रकाश तत्व पंच तत्व हो गए, वही हो गए नित्यानंद प्रभु। ईश भक्तान, भक्तान के स्वरूप हैं श्रीवास ठाकुर, ईशम श्री चैतन्य महाप्रभु खुद पूर्ण पुरुषोत्तम, ईशावतारकान सारे अवतार उनके प्रतिनिधित्व हैं, अद्वैताचार्य जो सदाशिव हैं जिनसे सारे अवतार आते हैं महाविष्णु, और तत्प्रकाशमश्च नित्यानंद प्रभु, और तत्शक्ति ही गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित और इत्यादि, ये लोग जो हैं भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो इस तरह से सारे अपने विस्तृत रूप को लेके, शक्ति को लेके आए हैं, सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को जो समझ जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो कृष्ण को समझेगा वो पूर्ण रूप से समझेगा कृष्ण को। कृष्ण मतलब सिर्फ राजा को समझा तो राजा का कितना मतलब, क्यों राजा है, उसका साम्राज्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, जब तक नहीं जानेंगे तब तक राजा को हम नहीं जानेंगे। इसी तरह से भगवान को जानना है तो उनकी सारी अलग अलग जो शक्ति है वो जानना, और महाप्रभु जो हैं वो अपने सारे सांगोपांगास्त्र पार्षदम लेकर आए और उनको समझ गया तो फिर कृष्ण को समझना बड़ा आसान है। तो महाप्रभु के द्वारा कृष्ण को समझना सबसे आसान है, और जो लोग महाप्रभु के द्वारा नहीं जाते उनको कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। जानते हैं कृष्ण है, कृष्ण की लीला हुई, और ये अंतरंग जो समझ है उन्हें समझ पाएंगे। तो अब खास दोनों को प्रणाम करते हुए दूसरा श्लोक लिखते हैं, वो है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो शंदौ तमोनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूं, नित्यानंद सह उदितम, जो अपने भाई नित्यानंद के साथ उदितम उदित हुए हैं, कहां गौड़ उदय, गौड़ देश के क्षितिज से, पूर्व से उदित होते हैं तो गौड़ देश पूर्वी पूर्व है, वो भी भारत का पूर्वी है, गौड़ोदय गौड़ उदय गौड़ के क्षितिज से दोनों पुष्पवंतव, पुष्पवंतव मतलब चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ उग गए, गौड़ चंद्र निताय चंद्र सूरज और चांद दोनों एक साथ उड़ गए, उग गए, गौड़ोदय पुष्पवंतव चित्रो, चित्रो मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि सूरज और चांद एक साथ कभी आपने देखा है उगते हुए, एक साथ उग रहे दोनों, बोले दोनों एक साथ उग गए दोनों भाई, गौड़ उदय पुष्चित्र शंदौ, और इन्होंने जो तरीका दिया है शंदौ, शम मतलब पूर्ण रूप से हृदय को शांत कर देता है, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला ये छाया है जगत जुरा है। जब चंद्र उगता है दिन में तप जाता है आदमी, एकदम सूख जाता है, बाद में जब चांद का चांद उगता है और कोटि चंद्र, अगर कोटि चंद्र एक साथ उग जाए कितना ठंडा शीतल शांत हो जाता है पूरा, खास करके गर्मी के दिनों में बहुत तप गया है तो शाम को जब चंद्रमा आती है बहुत शीतल, शम दो और तमोनु दो और शम दो मतलब खास आशीर्वाद भी दे रहे, सबको खास आशीर्वाद देने के लिए दोनों उदित हो गए, और तमोनु दो अज्ञान का जो अंधकार है तम उसको निकालते हैं। तो इस श्लोक में खास उनके दो इष्ट देव जो हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, और वो कौन है और उनका कार्य क्या है यहां वर्णन कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक का गुणगान करते हुए, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रजे ये बिहारे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जीनी दोहार निज धाम। कृष्ण और बलराम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पहले वृंदावन में ब्रजे ये बिहारे पूर्वे कृष्ण बलराम, जो 5000 साल पहले कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए थे, और सूर्य और चंद्र से कोटि गुना ज्यादा वो तेजोमय था, वो वही अब सेई दुई जगतेर होइया सदय, जगत के ऊपर बहुत सदय होकर दया दिखाते हुए गौड़ देशे पूर्व शैले कोयला उदय, गौड़ देश में इस बार अभी दोनों भाई आए हैं, फिर से वही दोनों भाई 5000 साल पहले जो वृंदावन में आए थे अभी गौड़ देश में आए हैं। और फिर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, यहार प्रकाश सर्व जगत आनंद। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने पूरे दुनिया को दिव्य आनंद से भर दिया है, अपने प्रकट होने से दिव्य आनंद से भर दिया है। और समझाते हैं, सूर्य चंद्र हरे जाई छे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। सूर्य चंद्र क्या करते, क्यों इन दोनों भाइयों की तुलना सूर्य और चंद्र जिसे की गई है? जिस प्रकार सूरज और चंद्र दो काम करते हैं, जब सूरज या चंद्र उगता है तो दो चीज होता है, एक अंधकार दूर हो जाता है, जब सूरज उगते ही अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार नहीं रहता, और दूसरा चीज है चीजों को सही तरह से हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अंधकार में ऐसा लगता है कि सामने कोई पहाड़ है, मुझे याद है तिरुपति में हम लोग एक रात को गए, 8-9 बजे जाके ठहरे थे, पहली बार जब मैं गया था छोटी उम्र में, तो सामने ऐसा लगा, मेरे को लगा सब पहाड़ है, सुबह उठ के देखा सामने बिल्डिंग है, एक्चुअली थोड़ी दूर को बिल्डिंग था, मेरे को लगा पहाड़, ऑफकोर्स उसके पीछे बड़े बड़े पहाड़ थे और वो धुंध के कारण दिखा नहीं कुछ, और मेरे को लगा हाँ पहाड़ के पास ही हम लोग ठहर रहे हैं, ऐसा चोटी जैसा दिखा 4-5। बाद में देखा तो सुबह उठ के जब सूरज आया तो पता चला सब बिल्डिंग है छोटे छोटे सामने, तो शाम को ऐसा लग रहा था, कभी कभी पेड़ भी लगता है तो कुछ और लगता है, या कोई कपड़ा टांग के रखा तो कोई आदमी लगता है, बाद में सुबह जब प्रकाश आया तो लगता है वो सब कुर्ता टांगा हुआ है किसी का, बस इस तरह से वस्तु का प्रकाश तब होता है, अंधकार दूर हो जाता है सूरज के आने से, और वस्तु को सही तरह से हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से सूर्य चंद्र जहां होई छे सब अंधकार दूर हो जाता है, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। ए मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कोयला तत्व वस्तु दान। ये दो भाइयों ने दो चीज किया, क्यों सूर्य और चंद्र की तुलना करते हैं? एई मतो दुई भाई जीवेर अज्ञान, जीव का जो अज्ञान है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हम लोग बोलते हैं अज्ञान को अंधकार की तुलना दी जाती है, क्योंकि अज्ञान में अंधकार की तुलना क्यों है, क्योंकि अंधकार में आदमी चीजों को सही तरह से जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, और दूसरा चीज है अंधकार में आदमी भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है, कहां पता नहीं किधर हूं मैं, कहां जा रहा हूं, कहीं गिर गया, कुछ लग गया, पर जब प्रकाश आ जाता है तो निर्भय हो जाता है, सही चीजों को अच्छा से देख पाता है, भय दूर हो जाता है और सही तरह से समझ पाता है। तो यही मत दुई भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश करी, अज्ञान का तमो अंधकार जो है उसका नाश किया दोनों भाइयों ने, और कोयला तत्व वस्तु दान, तत्व वस्तु मतलब हर एक चीज को सही तरह से जानने का जो ज्ञान है उन्होंने दिया। जो श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की जो देन है वो स्वीकार कर लिया है, वो ही चीजों को असली तरह से पहचान सकता है, दूसरे लोग नहीं पहचान पाएंगे। कैसे हम उसका चर्चा करेंगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाने वाले हैं। अज्ञान तमेरा नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? अज्ञान तमेरा नाम कहिए कैतव, कैतव मतलब धोखा, धोखा देना। अगर मैं कहूंगा ये सोने का है, ले लो, अब बाद में पता चला सोना नहीं, मतलब धोखा दे दिया किसी ने, तो इस तरह से सबसे बड़ा अंधकार जो है वो कैतव है। और वो कैतव धर्म क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष। लोग शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, पर लोगों को नहीं मालूम धर्म को क्यों पालन कर रहे हैं। धर्म का पालन करने से अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलेगा तो फिर काम वासनाएं तृप्त हो जाएगी, और काम वासना से तृप्त होकर भी तंग आ गया तो बाद में मोक्ष चाहिए, बस तंग आ गया, बहुत हो गया, आवरम हो, कहीं जाकर कुछ सांत्वना नहीं है, ये सब प्राप्त हो गई फिर भी हम सुख नहीं है, इसीलिए अभी बस यहां से निकल जाना, बस मर्ज हो जाओ, मतलब भगवान में लीन हो जाओ, खत्म, खो बैठो, अपना अस्तित्व को खो डालो, बस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शरीर है तो तकलीफ ना, खत्म ही कर डालो शरीर को। तो धर्मार्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताया गया है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब इसके लिए तो लोग जी रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे ताकि अर्थ मिले, अर्थ ताकि काम वासना तृप्त हो, और काम से जब तंग आ जाते हैं, सब वासना करने के बाद भी फिर से काम वासना जब कमजोर नहीं होती तो तंग आके बोलते बाद में मेरे को बस अस्तित्व को ही नष्ट कर डालो बस। तो ये चारों जो पुरुषार्थ के नाम में जा रहा है, जिसके लिए पूरा अपना लोग जीवन दे रहे हैं, इस अज्ञान को उन्होंने दूर किया। कैसे? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तापत्रय उन्मूलनम, जड़ से निकाल के सारे तापत्रय को फेंक डाले। कैसे? धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र श्रीमद भागवतम देखे। चैतन्य महाप्रभु का पांच योगदान है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चैतन्य मंजूषा नाम की एक पुस्तक में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पांच चीजों पर जोर दिए। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, सबसे पहले ये बताया, क्लियर कट, आराध्य भगवान एक ही हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, और कोई भी नहीं, वासुदेव कृष्ण भी नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, क्लियर कट। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, उससे बढ़कर और परम तत्व कोई है नहीं, उसके समान भी कोई नहीं है, क्लियर कर, साफ साफ बता दिया। एटलीस्ट जो भी चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है वो हरे हरे कृष्णा नाम से जाना जाता है, हरे रामा भी नहीं, हरे कृष्णा, पूरे विश्व भर में द हरे कृष्णा। एक चीज क्लियर है, जो भी चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है कृष्ण के पीछे पागल है, कृष्ण के पीछे पागल है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत क्लियरली बताता है, एते चाम शकला पुंस रामादि मूर्ति शुकलानि मेन तिष्ठन नानावतारम करो, कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम। कम से कम जो भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में दो दिन के पहले भी आया हो उसको इतना तो मालूम है कृष्ण भगवान है। वो सरस्वती मालती माता जी की 3 साल की लड़की, कुछ नहीं आता, 3 साल की लड़की पर लोगों के पास जाती थी, यू नो हु इज गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, नहीं कृष्णा, दूसरे के पास जाती, यू नो हु इज कृष्णा, नो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। यहां तक कि लोग बोलते हैं तुम लोग सुबह शाम कृष्ण 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 ही करते रहते हो, दिस इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली हमको कॉम्प्लीमेंट दे रहे कि तुम लोगों को कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली यही तो चैतन्य महाप्रभु का देन है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। अरे जो क्या बोलते हैं, मुक्त जीवों को उपलब्ध नहीं था वो चीज चीज चैतन्य महाप्रभु दे दी। आराध्य भगवान व्रजेशता नहीं। दूसरा तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला, उनका नाम, उनके संदेश उनसे अभिन्न है। अचिंत्य भेदाभेद नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति, क्लियर कट, वही कृष्ण नाम अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, नाम के रूप में आज प्रकट हुए हैं, और नाम में और कृष्ण में, उनके विग्रह में और उनमें, उनके संदेश में और उनमें, उनके धाम में और उनमें, कोई अंतर नहीं है। ये दूसरा संदेश। तद्धाम वृंदावन रम्या का चुपासना ब्रजबधु वर्गेन वा कल्पिता। और अगर सबसे श्रेष्ठ उपासक कृष्ण को प्रसन्न करने वाले हैं ब्रजबधु गोपियां, हेडेड बाय श्रीमती राधा रानी, खास करके हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। हरे कृष्ण, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्ण की उपासना करते हैं खास। क्योंकि राधा रानी को बहुत लोग बहुत नहीं समझते, लोग नहीं जान पाते, उनका तो शादी भी नहीं हुआ था। एक बार एक टीवी रिपोर्टर आई थी, वो एक वीडियो वाली राधाष्टमी के दिन आई थी, उसने ये प्रश्न पूछा, अब राधाष्टमी क्यों मनाते हैं, राधा रानी का तो शादी भी नहीं हुआ था, राधा जी का शादी भी तो नहीं हुआ। तो आदि लक्ष्मी, एक्चुअली मूल लक्ष्मी है वो, उन्हीं से सब सारे दूसरे लक्ष्मियां निकलती है, उन्हीं से सब दूसरे विस्तृत रूप है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभिहि गोलोक एव निवसति, ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभिहि। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विस्तृत रूप में जब अंश अवतार में प्रकट होते हैं तो श्रीमती राधा रानी विस्तृत रूप से उनको अलग अलग रूप में उनकी नित्य सहचरी के रूप में प्रकट होते हैं। तो आराध्य भगवान ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, महाप्रभु ने कोई कमेंट्री नहीं वेदांत सूत्र के लिए देने का जरूरत नहीं समझा। क्यों? क्योंकि ये था श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, भागवत जो है वो वेदांत सूत्र का भाष्याणाम ब्रह्म सूत्राणाम, उसी का भाष्य है, जो लेखक है उसी ने लिखा हुआ है अपना भाष्य, वही है श्रीमद् भागवत जो है वो एक्चुअली ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। इसीलिए हम लोग भागवत पे बहुत जोर देते हैं, खास करके महाप्रभु के अनुयायी जो भी हम लोग कोटेशन भागवत से देते हैं। प्रमाण अमलम, अमल पुराण है वो, क्यों? धर्म प्रोज्जित कैलवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। वेद व्यास ने अंतिम में पूर्ण सारे ग्रंथों की, यहां तक कि वेदांत सूत्र की रचना करने के बाद भी जब तृप्त नहीं थे, तब उनको नारद मुनि की स्फूर्ति के द्वारा जब भागवत की रचना की तब वो पूर्ण रूप से तृप्त हुए। दिस इज द क्रेस्ट ज्यूवल ऑफ ऑल लिटरेचर्स, और वो चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रकाशित किया, उसको उस पर एम्फसाइज किया, जोर दिया। बस ऐसा नहीं था पहले नहीं मालूम था, पर उस पर जोर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो हैं, इसका मतलब भागवत उनके लिए सबसे आराधनीय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, और भागवत में जो है बस क्लियर, उसके उससे अधिक हमको कोई और कुछ चाहिए नहीं, प्रमाण नहीं चाहिए। अगर भागवत कहता है हम उसको स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमार्थो महान, ये कैतव धर्म को हटाकर, धर्मार्थ काम मोक्ष को हटाकर प्रेमापमार्थो महान, पंचम पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ वो है भगवत प्रेम। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, गीता में भी है, भगवान ने कहा है। गीता को हम लोग पूछते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं हिंदुओं का, पर गीता का जो ज्ञान है पूर्ण रूप से उसको समझने के लिए, जब भगवान खुद जिन्होंने गीता बोला एक भक्त के रूप में आकर उन्होंने सिखाया कि अगर समझना है इसको तो ये तरीका है। तो इस तरीके से अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, ये सब कैतव धर्म है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, सारा कैतव धर्म जो है वो भागवत शुरू में ही निकाल के लात मार के निकाल देता है उसको, बोले यहां से कुछ नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई यहां नहीं आएगा, इधर धर्मार्थ काम मोक्ष कुछ अंदर नहीं चलेगा, इधर शुद्ध प्रेम बस, किसी को चाहिए ओके नहीं तो आउट, वो पूरा दुनिया पड़ा हुआ आप लोगों की, बोले यहां सिर्फ इतना ही मिलेगा। ये भागवत है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ भागवतम, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ भागवतम, भागवतम का स्टैंडर्ड ये शुरू से ही मोक्ष को भी लात मार के निकाल दे। अरे मोक्ष को लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं, पर उसको शुरू में ही लात मार दिया, पहले ही श्लोक में, दूसरे श्लोक में भागवत के, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, तार मध्य धर्मार्थ काम मोक्ष में, तार मध्य मोक्ष वांछा, मोक्ष की जो वांछा है, कैतव प्रधान सबसे बड़ा धोखा है, जिसको सबसे पूजनीय मानते हैं दूसरे लोग उसको भागवत कहता है कैवल्यम नरकायते, बोले कैवल्यम जो कैवल्य के लिए करोड़ों जन्मों तक लोग तपस्या कर रहे हैं, बोलते कैवल्यम नरकायते, बोले नरक में मत जाना कभी। नरक मतलब क्या, जो लास्ट चीज कभी सोचेगा भी नहीं आदमी नरक में जाना, संख्या षडगोस्वामी का कि उन्होंने मुखी के मुंह से लोगों को बचा लिया, मुक्ति का अजगर जो है उसके मुंह से लोगों को निकाल दिया बाहर, ये चेतन महाप्रभु का स्टैंडर्ड है कि कैवल्यम नरकायते, नरक है क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं है, कैवल्य में भगवान से लीन हो जाओगे तो भगवान की सेवा नहीं है, और भगवान की सेवा में जो आनंद है वो आनंद को खो बैठोगे, तो भले नरक में रहना स्वीकार है भक्तों के लिए, पर कैवल्य नहीं चाहिए, एकत्व नहीं चाहिए भगवान के साथ। अरे भगवान भी एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान बोलते हैं कि मेरे सेवा में लोग इतना आनंद ले रहे हैं, उनको क्या आनंद है मैं देखना चाहता हूं, भगवान को सब कुछ मालूम है पर उनको भी ये मालूम नहीं होता है कि मेरे भक्तों को क्या आनंद होता है, मेरे द्वारा मेरी सेवा में उनको क्या आनंद होता है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे से ज्यादा वो आनंद ले रहे हैं, बोले मेरे को पता करने है, वो चैतन्य महाप्रभु है जो अपना खुद का आस्वादन करने के लिए, कि ऐसी मुझमें क्या चीज है जिसको देखकर श्रीमती राधा रानी इतना प्रसन्न होती, इतना आनंद स्वीकार करती। और एक भी है, और एक भी बहुत सुंदर चित्र है भगवान का, करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमः, जो बाल मुकुंद की जो स्तुति करते हैं खास करके पुष्टि मार्ग वाले, उस श्लोक ये श्लोक बोलते हैं, जब जो मार्कंडेय ऋषि ने देखा पूरा प्रलय हो गया है और भगवान एक वटपत्र वास पूरे सृष्टि के प्रलय के जल में पूरा संसार डूब गया है, कुछ नहीं है, पानी पानी, बीच में एक छोटा सा एक वट वृक्ष है और उसमें से एक बड़ा पत्ता, बस और कुछ नहीं, उस वृक्ष में एक ही पत्ता है और उस पत्ते के ऊपर करारविंदे करारविंदे अपने हाथों के हस्त कमल से करारविंदे पदारविंदम अपने पदारविंद अपने भगवान के चरण कमल अपने हस्त कमल से अपने चरण कमल को लिए मुखारविंदे विनिवेशयंतम और करारविंद से पदारविंद को लेकर मुखारविंदे अपने कमल जैसे मुंह में विनिवेशयंतम घुसा रहे मुंह में बच्चे लोग भी कभी करते हैं, अपना ओटोस अपना जो अंगूठा चूसते हो पैर का अंगूठा, तो उसका मूल कारण है आदि पुरुषम। हम आदि जो भी करते हैं वो सब उसका मूल कारण वहीं से शुरू हुआ है। तो वो प्रवृत्ति वहीं से आई है। विनिवेशयंतम, ऑफकोर्स इन लोगों का थोड़ा आयरन डिफिशियंसी होगा इसीलिए धूल खाते, वो दूसरा है, पर भगवान का ऐसा नहीं है, उनका कोई आयरन डिफिशियंसी नहीं है। पर विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, और शास्त्र बतलाता है, आचार्य बताते हैं क्यों उसको चूस रहे हैं, उनको क्या कमी है, क्या कुछ खिलौने की कमी है, क्या कुछ कमी है उनको शरीर में, कुछ कमी है क्या, अपना पैर को चूस रहे हैं वो नहीं। भगवान सोचते हैं कि मेरे भक्त मेरे चरण कमल में हमेशा आश्रय लेते हैं, इतने आनंद रहते हैं, उनको कोई भी परिस्थिति में डाल दो दुनिया में उनको कोई तकलीफ नहीं है, जहां तक मेरा चरण कमल का आश्रय है उनको। बोली मेरे चरण कमल में ऐसा क्या चीज है, ऐसी क्या मधुरता है जिसके अंदर पूरी दुनिया में कोई स्थिति भी हो बड़े खुश हो, इतने आनंद का अनुभव करते, मैं भी थोड़ा चूस के तो देख लू क्या आनंद है इसके अंदर। तो वो चूस रहे एक्चुअली, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसानमान। तो इस तरह से भगवान भी चाहते कि क्या ऐसा चीज है कि इसके अंदर इतना आनंद है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, अरे वो आनंद को खत्म हो जाएगा अगर भगवान विलीन हो गए, नरक हो गया। आदमी औरत साथ में आते हैं फिर बच्चे पैदा करते हैं, क्यों बच्चे पैदा करते हैं, द मोर द मेरियर, जितना ज्यादा उतना अच्छा है ना आनंद, जितना ज्यादा लोग हैं उतना आनंद ज्यादा। पर एक बच्चा बोलता है क्यों मेरे को पैदा किया, मैं वापस जाना चाहता हूं, जहां से आया वही वापस जाना चाहता हूं, क्या इसीलिए तेरे को पैदा किया ये दिन देखने के लिए। इस तरीके से भगवान ने एको बहुशा महा आनंद के लिए आनंद में वो भ्यासा अपने आप को विस्तृत किया। हम लोग बोलते हैं हमको नहीं खेलने का, हमको कुछ नहीं करने का, मेरे को वापस जाने के बाद ठीक है आ जाओ अंदर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, नहीं चाहिए तुमको आनंद, आनंद नहीं चाहिए ठीक है। आनंद के भंडार है, वो बांटना चाहते हैं देना चाहते हैं, और हम इतने मूर्ख हैं, नरकीय स्थिति जैसा, अरे कोई भोग कर रहा है आपको बोलता नहीं मेरे को सोना चाहिए, सोना चाहिए जा सो जा बस, सो जा बस हमेशा के लिए सो जा, उठना ही मत, वही मुक्ति है एक्चुअली, लीन हो जाना हमेशा के लिए सो जाओ बस, दुख तो नहीं रहेगा सुख भी नहीं, न्यूट्रल गियर में बस। दुख से तंग आके अभी मेरे को सिर्फ सोना चाहिए बस, एक टैबलेट लेके सो जाना बस, मुचुकुंद जैसा तंग आ गया, पर अरे उठने के बाद तो असली जीवन का भोग करो आनंद लो। तो नरक है वो, जो आनंद लेना चाहता है उसके लिए नींद जो है नरक है वो। तो कैवल्यम नरकायत तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान यहा होइते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। क्यों? क्योंकि यहा होइते अगर मोक्ष मिल गया, मोक्ष के पीछे भाग रहे लोग, पर उसमें मिक प्राप्त भी हो गई, कैवल्य मिल गया, यहा होइते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान, नहीं चाहिए वो। किसको मालूम है दुनिया में, आप जाके पूछिए धर्म का क्यों पालन कर रहे हैं, जेनरली 99% जो पालन कर रहे हैं इसीलिए कि ये सब करने से हमको सब सुख संपत्ति घर आवे, ताकि हम यही खुश रहे बस, इसी संसार में ठीक ठाक चलते रहे हम। अरे पर मृत्यु आने वाले, बुढ़ापा आने में, बीमार, वो जब आएगा देखा जाएगा, और उस समय इतना हालत होता है, इतना तकलीफ होता है लोगों को, नहीं जान पाते हो। फिर कहते हैं कृष्ण भक्तिर बाधक यत शुभ अशुभ कर्म सेह एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म, दूसरा तमो धर्म, एक तो एक कैतव प्रधान उसको हटा दिया, धर्मार्थ काम मोक्ष। और फिर बोलते हैं कृष्ण भक्तिर बाधक, कृष्ण भक्ति में बाधक होने वाला जत शुभ अशुभ कर्म, अशुभ कर्म तो ठीक है, शुभ कर्म भी अगर बाधा है ना, मेरा हम लोग को नहीं लेना देना उसको। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही गीता में भी वर्णन है। क्योंकि इस भौतिक संसार में शुभ का मतलब क्या, जो हमको विषय भोग या इंद्र तृप्ति प्रदान करता है वो शुभ कर्म, और अशुभ मतलब जो हमको संकट में डाल देता है संसार में। पर शुभ या अशुभ अगर बड़े पूरे दृष्टिकोण से देखा, सही दृष्टिकोण से देखा जाए, दोनों ही अशुभ है। क्योंकि ये संसार ही दुखों का सागर है। जैसा कोई जेल में है और बोलता है आज क्या खाना है, आज हलवा है, शुभ है, आज अच्छा दिन है। जेल में साल में एक बार खाने को मिलता है, शुभ। अशुभ कर्म मतलब क्या, आज पत्थर फोड़ने को नहीं मिलेगा, आज छुट्टी सबके लिए, जेल से छुट्टी नहीं, जेल में सड़ते रहो, आज पत्थर फोड़ने के लिए छुट्टी मिला, छुट्टी मिला दूंगा हमको, वो क्या शुभ है क्या? प्रभुपाद तो एकदम बड़े सख्त उदाहरण देते हैं इस चीज के बारे में। सुअर जो होता है, सुअर जो है वो भेदभाव करता है, उसके लिए शुभ कर्म, शुभ अच्छा क्या मतलब क्या, अगर फ्रेश और एकदम फर्स्ट क्लास जूसी, अभी अभी रिलीज किया हुआ क्या बोलते हैं मल है, विष्ठा है, वो उसको लिए शुभ, आज तो मेरा दिन और शुभ हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास मिला। और अगर दो दिन का सूखा चीज पड़ा है वो अशुभ है यार। वस्तु तो वही है। तो सुअर जैसी मेंटालिटी के लोग इस भौतिक संसार में ये शुभ है ये अशुभ है, क्योंकि मेरा इंद्र को अच्छा लगता है, ये इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अशुभ है। पर बुद्धिमान व्यक्ति वो है, बोलता है शुभ अशुभ अल्टीमेटली ये सब अशुभ, जगह ही अशुभ है यार, यहां से हमको निकलने का है। तो इस तरह से कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा चीज हमको प्रदान कर सकता है? भले ऑफकोर्स हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लोग आराम से वैसासन पर बैठकर, पर हम भी इन चीजों से बहुत आ सकते हैं आज की दुनिया में। पर कम से कम उनको मालूम है कि ये सब अशुभ अशुभ जो है अल्टीमेटली अशुभ है, जिसको महाप्रभु की कृपा मिली है, नहीं तो उनको मालूम भी नहीं होता। हम इसी को शुभ समझकर खुशी से रहते हैं हम लोग। और सबसे शुभ क्या है एक्चुअली, सबसे शुभ का मतलब है जो भगवान की भक्ति में हमको लाए अशुभ से अशुभ स्थिति, भौतिक रूप से अगर हमको भगवान की भक्ति में प्रोत्साहित करता है ना, वो शुभ है। पर अगर शुभ से शुभ चीज हमारे जीवन में भौतिक रूप से अगर हमको भगवान से दूर ले जाए, वो एक्चुअली अमंगलमय है, अशुभ है। ये दृष्टिकोण जो है, जैसे प्रभुपाद ने कहा सारा बिजनेस सब कुछ ही हो गया, लॉस हो गया, और तो फिर प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, युधिष्ठिर महाराज का उनको श्लोक याद आ गया भागवत का, यस्या हम अनुग्रह नामी हरिषेत धनचन, जिसको मैं खास अनुग्रह करता हूं, जिसको कृपा करता हूं, सबसे शुभ मंगलमय काम करता हूं, क्या करता हूं, जिस दुनिया में जो जो आश्रय है सब आश्रय को हटा देता हूं। और उसको समझ में आता है कि एक्चुअली कोई आश्रय नहीं, एक ही आश्रय हुआ है, परम आश्रय। तो ये समझ बहुत ही कहना बड़ा आसान है, पर एक्चुअली ये समझ देना भी किसी को, कहना भी किसी को, कितने लोगों को समझता ही नहीं है ये सब। बस उसी में हम लोग छोटे छोटे कुप मंडूक जैसा, उसी में हम लोग बिजी है, बस अपना ये हो गया, सब बना के सब सेटल हो जाना। पर कितना सेटल होगा, कितना देर तक सेटल होने तक सब अनसेटल हो जाता है हमारा शरीर, सब सेटल करने तक धीरे धीरे हमारा शरीर अनसेटल हो गया, फिर उसको सुधारते सुधारते परमानेंटली सेटलमेंट हो गया हमारा फिर पुनरअपि जननम, फिर यहां से। आप बोलो हर हफ्ते आपको बोला जाए कि एक नया फ्लैट मिला आपको, अच्छा ठीक है, सब सेट कर रहे हैं आप फ्लैट को, शनिवार को सब बैठ के पूरा सेट किया, रविवार को बोला अभी चलो यहां से निकलो दूसरा फ्लैट अभी, बस पहले पहले अच्छा लगेगा, हर हफ्ता न्यू फ्लैट, पर बाद में बोलेगा भाई एक फ्लैट बड़े छोटा फ्लैट हो परमानेंटली रहने को दो, हम तंग आ गए, सब सेटल करना फिर अनसेटल करना। ऐसा ही शरीर है, पढ़ लिख के 35 साल पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद 5 साल चक्कर मार के जॉब मिला, उसके बाद शादी होकर बच्चा पैदा होने तक बूढ़े हो गए, सब आनंद लेने का, परमानेंटली रिटायर होने के बाद सेटल होने का सोचा था, फिर अभी वो तैयारी करना जाने के लिए अलग दूसरे सेटलमेंट, अब दूसरा फ्लैट तथा अधिहांतर प्राप्त। तो बोले किस लिए किया, इतना गधे के समान काम करके इतना तकलीफ उठा के सब सेटल करने जा रहा हूं, तो फिर धीरे धीरे सब, और उसमें भी हमेशा एंग्जाइटी होगा कि नहीं नहीं होगा, बड़े विशाल दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने आप में हंसी आता है। हम लोग इतना गंभीरता से उसको ले लेके उसी में अटक जाते हैं, सोचते नहीं अभी थप्पड़ पड़ने वाला है बुढ़ापा मृत्यु बीमारी का। तो ठंडे दिमाग से सोचो तो समझ में आएगा कि क्या दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु। और इस ज्ञान के द्वारा ऐसा नहीं है कि हमेशा थोड़ा डिप्रेशन में चला जाएगा, सिर्फ आदमी इतना ही देखेगा ना पुनरपि जनन को तो डिप्रेशन में चला जाएगा, पर नहीं, दिव्य आनंद का अनुभव एक्चुअली भले इस शरीर में हो भले मुक्ति हो, जो कृष्ण भक्ति का रस का आस्वादन किया है किसी स्थिति में वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर पर है। हाँ फिर कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभ अशुभ कर्म सब एक जीवेर अज्ञान सेह एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। ये सब अज्ञान है और वो अज्ञान तमो धर्म से हमको उठा रहे हैं सनातन धर्म में, धर्म प्रोज्जित कई तो परम धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। फिर कहते हैं यहार प्रसादे तम होए नाश, यहार प्रसादे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से जहार प्रसादे ऐ तमो होए नाश, तमो नाश हो जाता है, मोक्ष की वांछा नहीं होती है, शुभ चीजों के अशुभ चीजों की इस भौतिक संसार में रहने की वांछा नहीं होती है। तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश, तमो का नाश हो गया अब तत्व का प्रकाश कर रहे हैं, और वो तत्व क्या है, तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। तत्व वस्तु क्या ध्यान दे रहे हैं, तत्व वस्तु कृष्ण, सबसे पहले कृष्ण को जानो, कृष्ण यानी सर्व आकर्षक, कृष्ण यानी सच्चिदानंद स्वरूप, कृष्ण यानी आनंदमय। तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप यानी संबंध, भगवान के साथ अपना संबंध को जानो, अभिधेय मतलब उस संबंध को जागृत करो भक्ति के द्वारा, और उस भक्ति के द्वारा प्रेम आदान प्रदान कृष्ण के प्रति जो रस का है आनंद लो, यही एक्चुअली तत्व है। और जिसने इसका अनुभव किया है उसकी तुलना में पूरा भौतिक संसार की चीज जो है इनसिग्निफिकेंट तुच्छ लगते हैं। तमो नाश करी करे तत्व, हाँ नाम संकीर्तन वही रासलीला चेतन महाप्रभु के द्वारा नाम संकीर्तन एक्चुअली नाम संकीर्तन जो है वो रासलीला से अभिन्न है, कृष्ण की रासलीला से अभिन्न है प्रेम संकीर्तन। जब श्री चेतन महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ प्रेम संकीर्तन करते थे तो एक्चुअली अपने चेतना को गोलोक वृंदावन ले जाता है, एक्चुअली प्रेम संकीर्तन, जब प्रेम पूर्वक भक्त लोग एकत्रित होकर बिना कोई अपनी हृदय की शुद्धिकरण और कृष्ण की गुणगान करने के हेतु मात्र साथ में आते हैं तो उस संकीर्तन में डायरेक्ट उसमें और रासलीला में कोई अंतर नहीं। इसलिए वो चित्र है, एक पेंटिंग है जहां राधा रानी कृष्ण की सेवा करते हैं, दूसरा हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, एक के नीचे एक वो फोटो बहुत सुंदर पेंटिंग है वो। और नाम संकीर्तन जो है सारे आनंद का सार है, प्रेम संकीर्तन कृष्ण नाम संकीर्तन। और फिर कहते हैं सूर्य चंद्र बहिरेर तमसे विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि ये प्रकाशे। सूर्य और चंद्र क्या करता है, बाहिरेर तम विनाशे, बाहर का अज्ञान बाहर का अंधकार दूर करता है कि नहीं। अगर आप कमरे को लॉक कर दो, कपड़ा काला कपड़ा डाल दो, कुछ पेपर लगा दो, क्या बोलते हैं एक्सरे को डिपार्टमेंट लगाते हैं ना, एक थोड़ा भी प्रकाश अंदर नहीं है। तो इस रूम को आप ऐसा पैक कर दो, भले जितना भी सूरज चमके चंद्र चमके, इतना भी प्रकाश अंदर नहीं आएगा। तो सूर्य और चंद्र जो है बाहर के अज्ञान और अंधकार को दूर करता है, और बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशित बाहर के वस्तुओं को प्रकाशित करता है। पर कोई गुफा के अंदर कुछ वस्तु है उसको हम देख नहीं पाएंगे, और वहां का अंधकार जो है वो दूर नहीं करता है सूर्य और चंद्र भी। पर ये दोनों भाई जो है सूर्य चंद्र, ये मामूली सूर्य चंद्र नहीं है, ये अलग सूर्य चंद्र है। ये चित्र हो, ये आश्चर्य है कि इनका महिमा क्या है। द्वि भाई हृदय रक्षली अंधकार, ये दोनों भाई जब प्रकट होते हैं ना गौड़ देश के क्षितिज से, ये दोनों ऐसे चंद्र और सूर्य हैं जो हृदय के अंदर आपका जो अंधकार है उसको भी दूर कर देते हैं। इनका इनका कृपा आप अगर स्वीकार कर लोगे ना, तो आपके हृदय में जो अंधकार है, कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, हम जानते ही नहीं है। इतना बड़ा खजाना अंदर है और इतना अंधकार है, हमने देखा ही नहीं कभी। पर ये जो दो भाई ने तरीका दिया है इस हरे कृष्ण महामंत्र का, हरिनाम संकीर्तन का, इसको अगर आप स्वीकार करोगे, अंदर का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। आप तुरंत पहचान लोगे, बाप रे इसको मैं पाल पोस के बड़ा किए तो अनर्थ है, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, मद मात्सर्य, इन चीजों को मैं पाल पोस के बड़ा करके धन मूर्ख के हृदय में छुपा के रखा था, धन समझ के। आज मैं, मेरे को समझ में आ गया कि ये जो विचार है, ये प्रकार के हमारे चीज है, ये सब तो अंधकार है, चलो फेंको, हटाओ ये सब कचरा, हटाओ इसमें से। जब हरि कृष्ण महामंत्र का प्रामाणिक से आदमी जप करने लगता है ना, तो अंदर जिसको हम लोगों ने बड़ा खजाना मान के रखा है, वो सारे अनर्थ समझ में आता है हमको। बाप रे ये तो अनर्थ है, इसको उठा के फेंको। तो अंदर से समझ में आ जाता है। और दूसरा क्या है, द्वि भाई हृदय रक्षली अंधकार, द्वि भागवत संगे करह साक्षात्कार। और इनकी कृपा क्या है, दो प्रकार के भागवतों का संग साक्षात्कार कराते हैं हमको, जिसके द्वारा असली वस्तु क्या है, वो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है। वो कौन सा श्लोक है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, एक्चुअली नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बोलना है। वो वस्तु है हमारे हृदय में, पर वो कहीं अंदर में जाके भूल गए हम लोग क्या था, कहां है, और दूसरे चीज सब भर गए हैं और उसको हम लोग पकड़ के रखे। तो द्वि भागवत संगे करह साक्षात्कार, दो भागवतों का साक्षात्कार कराते हैं ये दोनों भाई की कृपा से। एक बद एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक तो भागवत कौन है, श्रीमद भागवतम, ये उनका योगदान है दो भाइयों का, कि उन्होंने भागवतम की महिमा को सही, ये महिमा जो है उसको प्रकाशित किया है। उससे पहले भागवत की महिमा लोगों को उतनी मालूम नहीं थी, पर महाप्रभु ने गदाधर पंडित के साथ बैठकर हर रोज सिर्फ भागवत सुनते थे। और दूसरा, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, तो भक्ति रस का जो पात्र है ऐसा भागवत, ये हमारी कृपा, हमारी असीम कृपा है कि प्रभुपाद जैसे चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हमारे जीवन में इतने नजदीक हमको देखने को मिला और उपलब्ध हुए हैं, उनकी पुस्तक इत्यादि हमको उपलब्ध। बिना ऐसे व्यक्ति के भागवत क्या है, कैसे समझते। प्रभुपाद से पहले भी लोग भागवत पढ़ते थे, भागवत सबका लोग सुनने जाते थे, पर क्या उनको मालूम था कृष्ण क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है। सिर्फ कोई मरने के बाद उसके नाम पे एक भागवत सप्ताह करा दिया, बस उसको उसका फोटो लगा दिया, सब सो रहे वो फोटो भी वो सुन रहे, बस उसका उद्धार होगा शायद सात दिन के बाद, धुंधुकारी का हो गया तो इसका भी हो जाएगा। तुम लोगों का क्या, हमको नहीं मालूम। पर एक्चुअली एक तो व्यक्ति भागवत और दूसरा पुस्तक भागवत, ये दोनों कृपा है श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। एक भागवत है भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, जो शुद्ध भक्त है, जो पूर्ण रूप से भक्ति के रस में मग्न हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु में डूब रहा है, कल्लोल मग्नम हो, ऐसे भक्तों का संग। द्वि भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, तहार हृदय तार प्रेम हो वश। और देखिए, द्वि भागवत द्वारा, ये दोनों भागवतों के द्वारा, शुद्ध भक्त के द्वारा और भागवत शास्त्र के द्वारा, सबसे पहले हमारे हृदय में वो प्रेम रस भर देते महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, हमारे हृदय में ये दो भागवतों के संग के प्रेम रस भर देते हैं और उस प्रेम रस से खुद आकर्षित होकर वो आ जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब पात्रता भी उन्होंने दिया और पात्रता से वो खरीदे भी जाते हैं। अगर कोई दुकान, आप सोचो कोल्हापुर में न्यूज़पेपर में आए कि ये दुकान में सबसे अच्छे अच्छे बेस्ट प्रकार का कार, बेस्ट प्रकार का गाड़ी, बेस्ट प्रकार का सामान सब यहां उपलब्ध है और इसको खरीदने का जितना भी मूल्य है, हम पीछे का एक दरवाजा है वहां से देते पैसा, सामने का शोरूम में खुला हुआ ये सब वस्तु है और जिसको भी खरीदना है ना, पैसा चाहिए, पीछे दरवाजे पे और एक काउंटर है, वहां जाके पैसा ले लो। ये खरीदने का पैसा भी हम ही लोग देंगे और खरीदने का वस्तु भी हम ही देंगे। कोई ऐसा दुकान है इस भौतिक संसार में? ये दोनों भाइयों ने ऐसा दुकान खोल के रखा है। एक तो बताया, देखो भैया प्रेम प्रेम है, प्रेम चाहिए, पीछे देखो नादी आगो ध्रुमे नित्यानंद महाजन। नित्यानंद महाजन ने और एक दुकान खोल के रखा उधर, बोले आओ भाई श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम ही हटे बिका है, श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा का मूल्य दे दो, ये शुद्ध नाम ले लो और सामने काउंटर पे जाके जो खरीदना खरीद लो, प्रेम मिल जाएगा आपको। ऐसा कृपा आदमी कहां मिलेगा? एक तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट का दुकान खोला है और पीछे के काउंटर से पैसा भी दे रहा है खरीदने का पैसा, और उसका कोई मतलब ये नहीं है, लोन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले पहले गाजर लटका दिया, बाद में लंगोट भी खींच लिया। आज की दुनिया ऐसा है, फ्री में गाजर लटका तो समझ लेना पीछे लंगोट भी खींचने के लिए पीछे खड़ा आदमी है। पर ऐसा नहीं है, ये दोनों भाई ऐसे नहीं है, फ्री में दे रहे और साथ साथ में बोलते हैं खरीदने के लिए पैसा भी लेना, प्लीज आओ ना भाई ये ले लो। मतलब पागल आदमी लोग ऐसा कर सकते, बस और कोई खोल देगा ऐसा दुकान? अब बोलो रिलायंस वालों को ऐसा दुकान खोलने के लिए, ऐसा खोलेंगे दुकान? ये रिलायंस, रियल रिलायंस, पूरा रिलायबल ब्रदर्स है, देने वाले हैं 100% गारंटी। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम ही हाटे थे बिकाय, बड़ो मजार कथा था है, बड़ो मजार। अरे सबसे मजा का बात यह है कि कुछ नहीं, कुछ देने का बात नहीं, सिर्फ लेगो लेके जाओ भाई बस। महाप्रभु बोले अरे मैं खोल के रखा हूं, मैं बांट रहा हूं, लेने के लिए कोई आता नहीं। क्यों? सुमेधसा, अरे बुद्धि चाहिए उसके लिए भी कि फ्री में मिल रहा जाके खरीद के लाओ उसको। पर हम कलयुग के इतने गए गुजरे लोग है, इतने मति भ्रष्ट हो गई है, वो भी नहीं पहचानते। तहार हृदय तांड्रिक प्रेम होए वश, पहले तो प्रेम भर दिया हमारे हृदय में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा और उस प्रेम से वो खुद भी वश हो गए, बोले मैं बिक गया तुम्हारा, तुम इतना प्रेम करते हो मेरे से। और प्रेम किसने दिया? उन्हें नहीं दिया सबसे पहले, और प्रेम करने के बाद हरे कृष्णा बोल के बुलाया तो हाँ तुम्हारा मैं वश हो गया, बिक जाते हैं दोनों। एक अद्भुत, हाँ दो अद्भुत है, एक अद्भुत क्या है? एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, सबसे अद्भुत चीज है कि सूरज और चांद एक साथ उग गए। ये लोग अगर नित्यानंद 500 साल के बाद आते और चैतन्य महाप्रभु बाद आते वो अलग बात है, दोनों एक साथ आ गए दोनों भाई, ये पहला अद्भुत है। आर अद्भुत चित्त गुहार तमो करे नाश, एक तो समकाले दोहार प्रकाश, सम एक ही कालीन, समकालीन दोनों आप भाई आ गए एक साथ मिलकर। और अर अद्भुत दूसरा अद्भुत क्या है? चित्त गुहार तम करे नाश, चित्त के गुह में जो ये अंधकार है उसको निकाल देते हैं और अंत में कहते हैं, हाँ कहते हैं, एई चंद्र सूर्य दुई परम सदाय जगत तेरा भाग्य गौड़ करिला उदय। ये दोनों सूरज और चंद्र इतने दयालु हैं लोगों के प्रति के सबके सौभाग्य को खोलने के लिए, लॉटरी खोलने के लिए दोनों एक साथ इस गौड़ देश के क्षितिज से उत्पन्न हो गए। और यहां प्रभुपाद पांच प्रकार का तमो गुण, पांच प्रकार का तमो अंधकार बहुत सुंदर से समझाते महाभारत के उद्योग पर्व से। पांच प्रकार के अज्ञान को ये भाई दूर कर देते हैं। पांच प्रकार का अज्ञान क्या है? पहला, शरीर को मैं समझना, देहात्म बुद्धि। पहला अज्ञान है कि इस शरीर को हम अपने आप मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूं। दूसरा अज्ञान है कि भौतिक विषय भोग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना और उसके लिए अपना पूरा जीवन दे देना। तीसरा अज्ञान है हमेशा चिंतित रहना। जब आप शरीर से अपने आप को सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात, अगर शरीर को आप अपने आप समझ लिए, हमेशा चिंतित रहोगे ही क्योंकि शरीर धीरे 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 पिघलता जा रहा है और उसको बनाने की कोशिश, अरे हार नहीं वाले हम लोग, हमेशा चिंतित रहेंगे। और चौथा है हमेशा लैमेंटेशन, लैमेंटेशन मतलब शोक करना, हमेशा शोक, अरे ये चला गया, अरे ये नहीं मिला, हमेशा शोक। ये चौथा अंधकार, चौथा अज्ञान। और पांचवा अज्ञान वो क्या है कि परम सत्य के ऊपर भी कुछ तत्व है। कृष्ण ठीक है, पर कृष्ण के ऊपर भी कोई एक व्यक्ति है जो अगर टाइट कर देना तो हमारा फिर मुश्किल हो जाएगा। खास करके हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आता है तो हमको लगता है कि बेचारे कृष्ण भी क्या करेंगे, हमारा भाग्य ही ठीक नहीं। इसका मतलब जो भाग्य है ना वो कृष्ण को भी पकड़ के साइड में बोला तुम लो मैं संभाल लेता हूं, ऐसा नहीं है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, एब्सोल्युटली कृष्ण इज कंट्रोल। बट अब कभी कभी हमको लगता है कि नहीं कृष्ण को तो शरण गए पर बेचारे कृष्ण को भी ये शायद नहीं मालूम क्या हो रहा है मेरे जीवन, या कृष्ण भी कुछ नहीं कर पा रहेंगे इसको। तो परम सत्य से भी ज्यादा, और इसीलिए भय आ जाता है। भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्ययो अस्मृति। भय कब आता है? अगर एक बच्चा है, एक बच्चा को जब एक कुत्ता आ गया और भौ 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 करने लगा तो तुरंत अपने पिताजी का हाथ पकड़ लेता है, तो भय दूर हो जाता है। उसको मालूम है मेरे पिताजी एक लात मारेंगे तो कुत्ता मर भाग जाएगा। पर अगर 10-15 कुत्ते एक साथ आकर पिताजी पे आक्रमण कर दिए और बच्चा देखता है कि पिताजी भी भाग रहे हैं तो डर जाता है वो, क्योंकि लगता है बाप रे जिसका मैं आश्रय लिया वही डर के मारे भाग रहे हैं, इसका मतलब अभी मैं खतरे में हूं। इस तरह से जो कृष्ण के विज्ञान को नहीं जानते वो लोग जब कृष्ण का आश्रय लेते हैं और जब जीवन में कुछ होता है तो उनको लगता है कि ओहो कृष्ण भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, तो भयभीत हो जाते हैं। जिनको मालूम है कि नहीं मारे कृष्ण राखे, इसीलिए प्रहलाद महाराज निर्भय थे, एब्सोल्युटली फियरलेस। भले हिरण्यकशिपु सामने क्यों नहीं खड़ा, जिसको देखकर इंद्र का भी हिल जाता था, पर कैसा 5 साल का लड़का इतना निर्भय था, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से विश्वास था कि परम सत्य से ऊपर मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, अब उनकी अनुमति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और अंत में कहते हैं से द्वी प्रभुर करी चरण वंदन यहा होई ते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन। अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसलिए से द्वी प्रभुर करी चरण वंदन, सब मिलकर हम इन दो प्रभुओं के चरणों में वंदन करें, यहा होई ते विघ्न नाश, जिनकी कृपा से सारा विघ्न दूर हो जाएगा और अभिष्ट पुरन हमारी सारी जो समस्याएं हैं भक्ति में प्रगति करने की वो विघ्न निकल जाएंगे और अभिष्ट पूर्ण हमारी जो इच्छा है अभिष्ट सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम वो प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से ये दूसरा श्लोक में सामान्य वंदना के बाद खास इन दो भाइयों की वंदना करते हुए इन श्लोक की रचना की। जय श्री श्री ताय गौर चंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताय गौर प्रेमानंद।